गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण परमात्मा को प्रणाम। परम भागवदीय पुण्य श्लोक परमात्मा स्वरूप श्री 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 प्रेमपुरी जी महाराज, श्री अखंडानंद जी महाराज और आप सब के हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। 17वां और 18वां श्लोक पढ़ेंगे। पिताहमस्य जगतः माता धाता पितामहः वैद्यं पवित्रमोंकार रुक्षाम यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुरत प्रभव प्रलयः स्थानम् निधानम् बीजमव्ययम् पिताहमस्य जगतः माता धाता पितामहः वैद्यं पवित्रमोंकार रुक्साम यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुरत प्रभवः प्रलयः स्थानम् निधानं बीजमव्ययम् हरिः ओम। अस्य जगतः धाता पिता माता पितामह च वैद्यं पवित्रमोंकारः रुक्साम यजुः अहम् एव। अस्य इस जगतः संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण पोषण करने वाला एवं कर्मों के फल देने वाला पिता माता पितामह, पितामह माने दादा, पिता माता तो हम समझते हैं, च और वैद्यम जानने योग्य पवित्रम पवित्र ओमकार ओमकार ऋक साम यजुः ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अहम मैं ही हूं। क्या कहा? कहा गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी, गति ही भर्ता प्रभु साक्षी, निवासः शरणं सुरत प्रभवः प्रलयः स्थानम् निधानम् अव्ययम् बीजम्। गति ही मने प्राप्त होने योग्य, भर्ता भरण पोषण करने वाला, प्रभु सबका स्वामी और साक्षी शुभ अशुभ देखने वाला, निवासः सबका स्थान वासस्थान, शरणम शरण लेने योग्य, सुरत सुरत होता है मित्र के चार भाग होते हैं, सुरत माने ऐसा दोस्त ऐसा मित्र कि वो आपसे कुछ चाहता नहीं, प्रति उपकार नहीं चाहता किंतु हित करने वाला, प्रभवः उत्पत्ति प्रलयः प्रलय रूप, स्थानम सबका आधार, निधानम ये जो निधान है वो प्रलय काल में संपूर्ण भूत सूक्ष्म रूप से जिसमें लय होते हैं उसका नाम निधान है। तो अव्ययम अविनाशी, बीजम कारण भी अहम एव मैं ही हूं। तो भगवान है वो कह रहे हैं कि देखो अर्जुन, ये संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला पिता माता और पितामह मैं हूं, तो जानने योग्य पवित्र ओमकार ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद भी मैं हूं। और अर्जुन, प्राप्त होने योग्य गंतव्य तथा भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, सबका साक्षी, सबका वास, सबका स्थान, शरण लेने योग्य, हित करने वाला, उत्पत्ति और प्रलय रूप, सबका आधार, निधान, प्रलय काल में सबका जिसमें लय होता है, ऐसे अविनाशी, ये बीज कारण भी मैं ही हूं। देखिए, मार्ग तो अनेक है, जे तो मत ते तो पथ, श्री रामकृष्ण परमहंस देव कहते हैं, एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति। सत्य तो एक ही है, ज्ञानी लोग उसको विविध रूप से बताते हैं कि मार्ग तो अनेक है किंतु गंतव्य एक है, मंजिल तो एक है। आप प्रेमपुरी में आना चाहते हैं तो कहां से आ सकते हैं भाई? ये तो जसलोक से भी आ सकते हैं, और ये फ्लोरा फाउंटेन से भी आ सकते हैं, बाबुलनाथ से भी आ सकते हैं, भारतीय विद्या भवन से आ सकते हैं, और अच्छा हो जाए तो जैसे छत के ऊपर हेलीकॉप्टर उतरने का बंदोबस्त कर ले भविष्य के ट्रस्टी लोग, तो उधर से भी आ सकते हैं। तो गंतव्य तो हमारा ये एक ही है, मार्ग तो अलग है। वैसे ही प्रभु के रूप अनेक होते हुए भी वह जो रूपायित हुआ है वह एक ही है। ये दिवाली में वो चीनी के खिलौने बनते हैं, चीनी का खिलौना बनता है, इसमें एक ताजमहल होता है, एक मंदिर भी होता है, एक चिड़िया होती है, एक तोता होता है, एक गुड़िया होती है, एक बंदूक भी होती है, एक पेड़ भी होता है, एक महात्मा गांधी भी होता है। एक बच्चा बोलता है मैं बंदूक लूंगा, दूसरा बोलता है मैं तलवार लूंगा, एक बोलता है मैं ताजमहल लूंगा, एक बोलता है मैं मंदिर लूंगा, एक बोलता है मैं गुड़िया लूंगा। हो, बिक्री करने वाला बोलता है मुझको सब पता है, 40 रुपए किलो, जो चाहे सो ले जाओ, हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। भगवान है वो एक ही है, चीनी एक है, और मिठाइयां अलग बन गए तो चिंता नहीं। वस्त्र तो एक ही है, आप बना लेंगे कुर्ता तो हम लोग बना लेंगे उत्तरीय, कोई पगड़ी बना सकता है, कोई धोती बना सकता है, महिलाएं अपने वस्त्र बना सकती हैं, वस्त्र तो एक है। सोना भी एक ही है, कान में पहनो, नाक में पहनो, गले में पहनो, हाथ में पहनो, ये तमाम विद्या हम जानते हैं, तमाम संत लोग ने हमें कहा है, किंतु मुश्किल क्या है कि वो एक है, ऐसा नहीं कि उसे एक ही रूप में देखा जा सके, उसके रूप की कोई सीमा नहीं है। ये गड्ढे छोटे मोटे बहुत सारे होते हैं, बारिश आने से तमाम गड्ढे भर जाते हैं, कोई छोटा है कोई बड़ा है। सूर्य तो आसमान में एक है किंतु सब गड्ढों में दिखता है, वो छोटे गड्ढे में भी दिखता है, बड़े गड्ढे में भी दिखता है। सूर्य तो एक है किंतु दिखते सब अनेक। तो ऐसे ही ये एक ही ईश्वर है, और ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम उसको हमेशा एक ही रूप में देखें, किंतु उसे खोजा जा सकता है। सभी रूप उसके हैं, जो है वही वही है। हर रूप में तू, हर रंग में तू, सब तू ही बना, सब तू ही तू है। सागर से उठा बादल बन कर, बादल से गिरा वर्षा बन कर, झरनों में गिरा फिर नदिया में बहा, गहरी नदिया, बस वही है, वो तो एक ही है। कृष्ण हमें यहां क्या संकेत कर रहे हैं कि शब्द समझने के समान है, साधना पथ हमारे जीवन का तब विस्तीर्ण होगा। अर्जुन, ये संपूर्ण जगत का धाता मैं हूं, ये धाता का है, ध्यान देना चाहिए, धाता होता है धारण करने वाला। हमारे यहां एक शब्द है धर्म, जिसको हम कहते हैं, ये मुसलमान धर्म है, ये हिंदू धर्म है, ये ईसाई धर्म है, ये स्वामीनारायण धर्म है, ऐसा हम लोग बोलते रहते हैं। अरे ये सब कोई भी धर्म नहीं है, ये अलग अलग मत मतांतर है, अलग अलग पथ है, धर्म एक ही होता है, धर्म दो चार नहीं होते। क्योंकि जो धर्म शब्द का अर्थ होता है धारण करना, धारण किया हुआ, धर्म का अंग्रेजी अनुवाद करते हैं रिलीजियन, तो गलत है। रिलीजियन जो शब्द है वो उसका कोई धर्म का अर्थ मजहब से नहीं होता है। ये मजहब तो एक पंथ है, सेक्ट है, संप्रदाय है। रिलीजियन का मौलिक अर्थ होता है जिससे हम बंधे हुए हैं। बड़ी कीमती बात है। क्या है ये बंधन शब्द? अप्रीतिकर है, कुरूप भी है। शायद पश्चिम ने धर्म को एक बांधने वाली सीमा के जैसे देखा है, इसलिए पश्चिम ने धर्म से मुक्त होने की भी चेष्टा की है। बहुत युद्ध धर्म के बारे में, ईसाइयों के भी बहुत ग्रुप हो गए, अलग 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 अलग, और बड़े क्लेश भी होते हैं उनमें। और जो नई पीढ़ियां हैं उनको आकर्षित करने के लिए बड़ी पब्लिसिटी की जाती है कि लोग धार्मिक बने, किंतु कोई भी व्यक्ति, जीव जंतु, कोई भी बंधन नहीं चाहता है। बंधन सोने की जंजीर में हो कि लोहे की जंजीर में, बंधन बंधन ही होता है। भारतीय मनीषा जो है वो इस बंधन में नहीं मानती है, नहीं, धर्म को मुक्ति मानती। धर्म वो जो हमको मुक्ति दिलाता है। धर्म कोई ग्रंथि नहीं है, गांठ नहीं है, रस्सी नहीं कि जिससे हम बंध जाएं। धर्म एक स्वतंत्रता है जिससे हम मुक्त हो सकते हैं। धर्म का अर्थ है जिसने हमें धारण किया है, इसे हम बंधे नहीं है, निष्पन्न हुए। मान लीजिए कि एक वृक्ष है, वृक्ष में थोड़ा ऊपर से नीचे आए, जड़ों का भी फैलाव है। वृक्ष ऐसा भी सोच सकता है कि ये जमीन वह है जिसने मेरे को बांध रखा है। अभी सोच लो अपने आप को, क्या जमीन ने वृक्ष को बांध रखा है क्या? कि वृक्ष का जमीन आधार है। अगर जमीन ना हो तो वृक्ष कैसे हो? तो अगर वृक्ष सोचता है कि मैं जमीन से बंधा हूं, और यह सोचने की गलती भी नहीं होगी, क्योंकि वृक्ष तो ऐसे देख सकता है कि जमीन ही है जिसमें मेरी जड़ें उलझी हैं, मैं बंधा हुआ हूं। वृक्ष जड़ों और जमीन के बीच के संबंध को यदि बंधन के जैसे देखता है तो वृक्ष उसको ऐसे भी देख सकता है कि ये जमीन मेरा आधार है जिस पर मैं सदा हुआ हूं। जमीन इज सपोर्टिंग मी, जमीन इज होल्डिंग मी, ऐसे भी सोच सकते हैं। तो जड़ों और जमीन के बीच में संबंध नहीं है, जड़ों और जमीन के बीच प्राणों का संबंध है। जमीन से जड़ को अलग कर दिया तो क्या ये वृक्ष में प्राण रहेगा? नहीं रहेगा। जिस पुष्प को डाली में हम देखते हैं, उस डाली में पुष्प खिलने के बाद में 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन रह सकता है। पुष्प को डाली से काट करके घर में कितना ही कर लो, फ्लावर वाज में सजाओ, एयर कंडीशन में रखो, नीचे थोड़ा नमक डालो, ना चीनी डालो, ना एस्पिरिन डालो जो लोग डालते हैं, कितना भी करो वो तो धीरे धीरे 2-3 दिन में मुरझा ही जाएगा, क्योंकि उन्मूलन हो गया है, अपने प्राण से छूट गया है वो। तो अगर वृक्ष ऐसा देखे कि मैं जमीन से बंधा हूं तो जमीन से मुक्त होने की उसका कोशिश शुरू हो जाएगी। इसे देखने से कोशिश शुरू हो जाएगी कि दृष्टि ही छुटकारे का प्रारंभ करेगी। ऐसा सोचने वाला वृक्ष अभागा है, अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्य है उसका। अरे जहां तक देखने का संबंध है वहां तक तो कोई हर्ज नहीं है कि वृक्ष समझ ले कि मैं जमीन से बंधा हुआ हूं, मैं आकाश में उड़ नहीं सकता। लेकिन जिस दिन वृक्ष बंधन से मुक्त होने की कोशिश करेगा, आकाश से उड़ना तो प्रश्न ही नहीं है, किंतु वृक्ष अपनी ही विचारों की वजह से अपनी आत्महत्या कर लेगा। जड़े उसका बंधन नहीं है, जमीन उसका बंधन नहीं है, जमीन उसका प्राण है, जमीन वृक्ष का जीवन है। तो धर्म का अर्थ भी यही है कि जिसने हमें धारण किया वो बंधन नहीं है, हमारे प्राणों का स्रोत है, जड़े बंधन नहीं है, जड़े वृक्ष के प्राण हैं, पृथ्वी से जड़ को बांधा नहीं जा सकता, जड़ जीवन देती है। सच तो यह है कि जड़ों के कारण ही वृक्ष आकाश में फैलने के लिए सक्षम हुआ है। तो जड़ों का जो रस है, जड़ों में जो प्राण है, ऊर्जा उपलब्ध हो रही है, उसके पत्ते, उसकी कलियां, उसके फूल, उसके फल, उसका सौंदर्य, उसका विस्तार, उसका विकास, ये जड़ की वजह से है, पृथ्वी की वजह से है। तो ध्यान रहे कि जड़ें जितनी गहरी जाएंगी उतना ही वृक्ष आकाश में ऊंचा जाएगा। अगर जड़ें जमीन के पूरे प्राणों में प्रविष्ट हो जाती है, संभव है वृक्ष आकाश को भी स्पर्श कर सकता है। जितनी होगी गहराई जड़ों की, उतनी ऊंचाई होगी वृक्ष की। जड़ें दुश्मन नहीं है, जड़ें ऊंचे उठने में बाधा नहीं है, जड़ें आकाश में उड़ने में सहयोगी है। उड़ने के लिए से पंख लगा करके नहीं है, ऊंचा उठने के लिए, उसके बिना वृक्ष बचेगा नहीं। आकाश में उड़ने का तो सवाल ही नहीं। तो ऐसे ही हमारी भारतीय मनीषा कहती है कि धर्म वह है जो हमको धारण किए। हमारी जानकारी के बिना उसको हम नहीं अपने आप को विच्छेद कर सकते, और बंधन में डालने का तो कोई अर्थ नहीं है। किसी भी धर्म ने किसी को बंधन में नहीं डाला है। अगर वो बंधन में डालता है तो मजहबी नहीं है, वो धर्म ही नहीं है। धर्म मुक्ति का पथ है, धर्म आनंद का मार्ग है, धर्म जीवन स्वातंत्र का मार्ग है, धर्म जीवन के उत्कृष्ट अभ्युदय का पथ है। मजे की बात तो यह है कि अगर आपको बंधन में डाला है और आपकी जानकारी भी नहीं, बंधन में डालने का अर्थ क्या होगा? एक दूसरा एक विचार ले लें कि भारतीय मनीषा की दृष्टि ऐसी है कि धर्म वह है, इससे हम अलग हो ही नहीं सकते, हमारा अस्तित्व ही नहीं हो सकता है। क्योंकि हमारा जो अस्तित्व है, हमारा प्राण है, हमारा जीवन है, धर्म मने कर्तव्य है। क्या मुझे बात करें, पहली ही बात, माता जिस बालक को जन्म देती है तो माता का पहला कर्तव्य मेला धर्म क्या? बच्चे को स्तनपान कराना है कि नहीं है? बोलो नहीं। मैं तो बच्चे को जन्म दे दिया, स्तनपान नहीं कराऊंगी, मेरी सौंदर्य है उसमें कमी हो जाएगी, ऐसा सोचने वाली माता है वो अधर्म करती है, क्योंकि वह अपने कर्तव्य से च्युत होती है। अभी पिता का धर्म क्या है? बच्चे को देखना कि अच्छी पढ़ाई करे, अच्छी शिक्षा हो, तो ये पिता का धर्म है कि नहीं है? वो पिता का कर्तव्य है कि नहीं है? क्या माता पिता बच्चे को जन्म देने के बाद में बच्चे के जीवन में वो एक अच्छा इंसान बने, अच्छा पढ़ लिख ले, उसको अच्छी नौकरी मिले, उसको अच्छी बहू आए, वो अच्छा धंधा कर ले, वो सेटल हो जाए, देश विदेश में जाए, उसके भी बंगले बन जाए, उसकी कार बन जाए, ऐसा माता पिता सोचते कि नहीं सोचते? ये एंटरप्राइज बिल्डिंग में हम गए थे तो उनके पिताजी कह रहे थे कि हमारा बेटा है कोई जगह में काम करता है, तो शाम को देर तक रहने में वो बिल्डिंग में नीचे कोई भेल वाला है, उससे भेल खा लेता है। तो देखा उसने कि एक दिन वहां पर भेल वाला बैठा हुआ खुद अपना खाना खा रहा है, एक और लड़का बैठा है। तो कहा ये कौन बच्चा है? वो दोस्ती हो गया, रोज रोज खाते हैं भेल। तो बोले ये मेरा बेटा है, 12वीं की परीक्षा अभी दिया है, वो CBSE में दिया है, वो 10वीं में उसको A+ मार्क हुआ था। A+ बोलने से क्या होता है? 95% से ऊपर। मैथ साइंस फिजिक्स में उसको 100 में से 100 मार्क मिले हैं, सबसे कम मार्क उसको सोशल स्टडीज में मिले हैं 90%। बेल बेचने वाले का बेटा। तो दूसरा बेटा है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट कर रहा है, वो सबसे बड़ा है, वो एमबीए हो गया है। तो क्या ये गलती है क्या? उसके धर्म में क्रांति है। जरूरत नहीं कि भेल बेचने वाले का बेटा भेली, उसने कोशिश की है, मैं सुबह से शाम 6 घंटा नहीं 8 घंटा नहीं 12 घंटा नहीं 16 घंटे तक मैं काम करूंगा, किंतु मेरे बच्चे हैं उनको मैं ऊपर उठा दूंगा, मेरे बच्चों को मैं ऊंचा उड़ा दूंगा। तो क्या ये त्रुटि है क्या उसकी? कि धर्म है, कि कर्तव्य है, वो अपने धर्म में निमज्ज है, वो धर्म में पक्का है कि उसने बच्चों को केवल जन्म ही नहीं दिया, वो बच्चों को जीवन भी देने के लिए जागृत है। कोई पौधा लगा दे, लगाने के बाद में उसको खाद भी तो देना पड़ता है, उसको पानी भी तो देना पड़ता है, उसको धूप आए ये भी देखना पड़ता है, उसको ठीक से हवा मिले देखना पड़ता है, कोई बकरी भेड़ा करके नहीं खा ले ये भी देखना पड़ता है। तो ये तमाम कर्तव्य को यदि हम करते ही नहीं तो हमारा धर्म क्या होगा? धर्म तो हमारा कर्तव्य है। वृक्ष जैसे जमीन से अलग नहीं हो सकता, पानी में रहने वाली मछली है वो भी पानी से अलग नहीं हो सकती। हाँ, सागर में है मछली, वो कहती है कि मैं सागर से अलग होना चाहती हूं, 1 मील दूर जाती हूं, 2 मील दूर जाती हूं, 3 मील दूर जाती हूं। अरे बिटिया, तुम सागर में ही हो, तुम्हारे ऊपर सागर है, नीचे सागर है, दाहिने सागर है, बाएं सागर है, अरे तुम्हारे भीतर भी सागर है। जब तक तुम्हारे भीतर सागर है तब तक तुम जीवित रहोगे, क्योंकि जल से तुम्हें बाहर कर दिया जाता है, कुछ देर तक जीवित रहती हो। क्यों? तुम्हारे भीतर में वो सागर की क्षमता है। अगर वो थोड़ा तड़पने के बाद में फिर से उसको सागर में छोड़ दिया जाए, पुनः जीवन उसमें हो जाएगा। ऊपर पानी, नीचे पानी, आगे पानी, पीछे पानी, पानी 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 पानी, बुझ सके ना ब्रह्मज्ञानी। हम अपने आप को क्या कहते हैं कि ये धर्म से हम अलग हो जाएं? अरे धर्म हमारा प्राण, धर्म हमारा जीवन, हमारे खून के कतरे कतरे में धर्म है। वो धर्म क्या है? हमारा कर्तव्य, हमारा जीवन, हमारे प्राण, हमारी ऊर्जा, हमारी चेतना। धर्म वह है कि जिससे हम अलग नहीं हो सकते, वह हमारी आत्मा है। इसलिए धर्म की जो दूसरी बड़ी व्याख्या भारत ने की है, वह महावीर स्वामी ने भी की है। महावीर स्वामी ने कहा कि धर्म वह है कि जो हमारा स्वभाव है, स्वभावो धर्म उच्यते। तो ये गलत नहीं है। स्वभाव क्या है? मानव का स्वभाव मानवता है। कल हम इस बात की चर्चा कर चुके हैं, हमारा जन्म होता है एक मानव के रूप में, एक इंसान के रूप में। तो इंसानियत, मानवता हमारा पहला और आखिर धर्म है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। ये मुसलमान लोग बोलते हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, तो मैं अल्लाह के आगे करके मेरा काम प्रारंभ करता हूं। हम लोग बोलते हैं कि सबसे पहले गणानाम त्वा गणपति प्रथम तमारी पूजा थाए, बीजा देव पछी थी होए प्रथम तमारी पूजा थाए। हो गणपति, तुम्हारी पहले पूजा है, बाकी सब पीछे आएंगे। हाँ, ओ ईसाई लोग कहते हैं लउदाई ने बर, तुम्हारे पड़ोस को प्यार करो क्योंकि वो भगवान है पहला, अतिथि देवो भव, हमारे पड़ोस में है। अरे जैन लोग कहते हैं नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उज्जैनम नमो लोए सव साउणम, हम अरिहंत को नमस्कार करते हैं, हम उपाध्याय को नमस्कार करते हैं, हम आचार्य को नमस्कार करते हैं, बच गया तो नमो लोए सव सावणम, हम सबको नमस्कार करते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव, सब कुछ तुम ही हो। जब माता तुम हो, पिता तुम हो, बंधु तुम हो, सब कुछ तुम हो। और बुद्ध लोग भी यही कहते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि।
बुद्ध और धर्म की प्राप्ति के लिए बिना संघ के उपाय नहीं है, बिना समाज के संभव नहीं है। संगच्छत्वम संगवधत्वम समनो मनाम सी जानता सहना भवतु सहनो भुनक्तु। तो समाज जो है, ये जो प्रकृति है, उसके विरुद्ध तो हम रह नहीं सकते, यही हमारा धर्म है। तो भगवान महावीर कहते हैं, क्योंकि स्वभाव ही हमें धारण किए हुए मानवता का स्वभाव कैसे भी हो, क्योंकि हम ये मोटी चमड़ी के नहीं बने हैं। श्री श्री मां शारदामणि देवी है, वो छोटी थी बहुत, तब उनकी शादी रामकृष्ण परमहंस देव से हो गई। वो सात साल के, 6 साल के रहे, रामकृष्ण परमदेव के 19 साल के कुछ रहे होंगे, तो शादी हो गई थी। शादी के बाद में वो रामकृष्ण तो बुला ही नहीं, वो तो अपने में मां मां करते थे। तो शारदामणि देवी के माता पिता ने देखा कि एक संघ है, वो वहां से हमारे जयराम वाटी से जा रहा है कलकत्ता, तो बोला कि हमारी बेटी को लेके जाओ, हमारे दामाद वहां पुजारी है दक्षिणेश्वर में, छोड़ देना, छोटी लड़की है। वो लोग तो बड़े लोग थे, अपने ढंग से चलते थे, तो लड़की पीछे छूट गई, पीछे छूट गई। जंगल के रास्ते में तो वहां एक बड़ा खूंखार एक लुटारा रहता था, बड़ी आंख वाला, बड़ा ऊंचा, बड़ी बड़ी मूछे और भयंकर दिखने वाला। तो ये लड़की पीछे अकेली छूट गई, तो उसने देखा है छोटी बिटिया कहां से, हाय उसे डर गई, जरा कहां जा रहे हो? ओ छोटी शारदा ने क्या कहा, पिताजी मैं अपने ससुराल जा रही हूं। देखिए क्या कहा, पिताजी मैं अपने ससुराल जा रही हूं, मेरे मम्मी पापा ने संघ के साथ में भेजा, बड़े बड़े लोग जल्दी चलते हैं, मैं छोटी रही ना, जल्दी नहीं चल पाई तो पीछे छूट गई, पिताजी मुझको उनके साथ पहुंचा देंगे? वो डाकू था, भयंकर था, बड़ी मूछ वाला, बड़ी आंखों वाला, लाल लाल आंखों वाला, भय से भरा हुआ। वो एकदम बिटिया के सामने, क्या बताइए, अच्छा अच्छा चलो, अपने घर ले गया। पत्नी को कहा बिटिया को भोजन कराओ, और ये बिटिया क्या बोल रही है, दामाद के पास जाना है, हमको पिता बुला है, हाथ में कुछ नहीं है, दामाद के पास भेजना है बेटी को, तो खाली हाथ नहीं भेजना, कुछ कपड़े दो, कुछ गहना दो, कुछ दो, लेकर के अच्छे से उनको दक्षिणेश्वर में पहुंचा के आ गए। अभी देखो वो लुटेरा है, लूटने का धर्म है उसका, हाँ, मगर उसके भीतर भी कोई इंसानियत तो है, मानवता तो है, कारुण्य तो है। आपने एंड्रूज की कहानी भी तो सुनी होगी, वो एक ग्रीक का गुलाम था, राजा से भाग निकला, राजा से भाग निकला, जंगल में गया, सिपाही लोग पीछे आए, मगर अंतर जंगल में चला गया, वहां एक शेर के पांव में जोर का कांटा लगा था, बबूल का, वो निकल नहीं रहा है, वो पक गया है, पीप लग गया है। देखा शेर वैसे ही मर रहा है, चलो हमको मरना है तो मरने के पहले एक सेवा कर लें। शेर का पांव उठाया, मुंह से दांत से खींच के कांटा निकाला, दबा करके पूरा पीप निकाल दिया, जंगल की कोई वनस्पति से पट्टी बांधी, रोज बांधता रहा, शेर के सिर में प्यार करता रहा, शेर भी इसको चाटता रहा। एक ही जगह में रहने पर एक दिन वो सिपाहियों के हाथ पकड़ा गया, राजा ने कहा बंद कर दो इसको, अब तक तो शेर ठीक भी हो गया था, अब राजा ने कहा जंगल में जाओ एक शेर को पकड़ो, शेर के सामने इसको जिंदा डालेंगे, शेर इसको खा लेगा, दुनिया को देखना चाहिए कि मेरे राज्य से गुलाम जो भाग गया उसकी गति क्या होती है। यही शेर को पकड़ के लाए, शेर को भी हफ्ता भर भूखा रखा कि ऐसे करके झपटेगा, हजारों लोग देखने के लिए जमा हुए, सर्कस के रिंग के माफिक खड़ा किया गया एक तुत, उसके बीच में शेर को रखा और इस गुलाम को लेके आए। शेर उसको देखकर के मटकता आया, पूंछ हिलाता आया, इसने उस शेर के गले में हाथ डाला, शेर उसको चाट रहा है, लोग देख रहे हैं, क्या आश्चर्य है। देखिए किसी के प्रति की हुई छोटी भी सेवा मिथ्या नहीं जाती है, किसी के प्रति दिखाई हुई दया कभी मिथ्या नहीं जाती है, किसी के प्रति दिखाया गया छोटा प्रेम मिथ्या नहीं होता है, क्योंकि आपके भीतर जो परमात्मा बसा हुआ है उनके भीतर भी वही परमात्मा बसा हुआ है। आपके भीतर जो अल्लाह अहुर्मज़दा जीहो वहां जन्दे वक्त वही वाहेगुरु सतनाम जीसस मोसस बुद्ध महावीर उनके हृदय में भी है। जिस गणेश को आप मानते हो उस गणेश के माए कार्तिकेयन को भी वो मानने वाले। क्या पूर्व है, क्या पश्चिम है, क्या उत्तर है, क्या दक्षिण है, ये तमाम जो हैं वो हमने अपने मानवता की सहजता के लिए विभाजित किए, किंतु वह तो एक ही है। अगर एक छोटा सा एक वर्तुल ले लो, इस वर्तुल को बोलो ये पूर्व ये पश्चिम है उत्तर, अब घुमा दो तो क्या हो जाएगा, कौन गया पूर्व पश्चिम में गया, पश्चिम पूर्व में गया। परमात्मा भिन्न भिन्न नहीं है। हमें जो धारण किए हुए हैं उसे हम भूल सकते हैं, उसे हम दूर नहीं हो सकते। जो धारण किए हुए उसे हम भूल सकते हैं, उसे हम दूर नहीं हो सकते, उसका हम विस्मरण कर सकते हैं, उससे हम विच्छिन्न नहीं हो सकते, उसे हम जन्म जन्म तक याद न करें ये हो सकता है, लेकिन क्षण भर के लिए भी उससे भिन्न नहीं हो सकते। पुनरपि जननम पुनरपि मरणी मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम य संसारे खरु दुस्तारे कृपया पारे पाई मुरारे जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। तमाम गतिविधि में भी जब तक हमारे भीतर प्राण है वो परमात्मा के साथ में हमारा अनुसंधान है। इसलिए सारी दुनिया में धर्म सीखने की भाषा अगर कोई समझ गया है, एक धर्म को एक लर्निंग है, कोई एक शिक्षण है, तो भारत ने यह भाषा सिखाई। क्या भाषा है, क्या कहा कि कदाचित आप उसको भूल सकते हैं, परमात्मा से अलग नहीं हो सकते। वृक्ष अपनी जड़ों को यदि भूल भी जाए, बहुत कठिन है, नहीं भूलना चाहिए, कोई कारण में भूल जाए, किंतु फिर भी वहां एक बार तो जानेगा कि इसकी वजह से ही मैं खड़ा हूं। ध्यान दे कि माता के गर्भ में बच्चे का प्रागट्य होता है। बच्चे का प्रागट्य कहां हुआ है, अंधकार में हुआ है कि प्रकाश में? वो माता के गर्भ में प्रकाश था कि अंधकार था? वो तो अंधकार था, प्रकाश नहीं, चेतना तो थी किंतु अंधकार था। तो उस अंधकार से प्रकट हुआ है नारायण, तो ये जड़ भी अंधकार में प्रकट हुई है। जड़ प्रस्फुटित हुई तो बाहर जाकर के प्रकाश मिला है, जब गर्भ से बच्चा बाहर आया तो उसने प्रकाश देखा है, किंतु प्रकाश देखने के पहले तो अंधकार में था। तो ये नहीं कहना चाहिए कि अंधकार ही मेरा जीवन है। अंधकार जीवन नहीं है, अंधकार से आपकी व्युत्पत्ति हुई है, अंधकार से आपकी प्राप्ति हुई है, अंधकार से आपका आगमन हुआ है, प्रकाश के साथ आप में हलन चलन हुआ है। अंधकार महाशांति है, इसलिए हम अंधकार से डरते हैं, क्योंकि हम कोई भी शांति नहीं चाहते, जो भी शांति चाहेगा वो अंधकार से डरेगा, अंधकार को प्रेम करने लगेगा। वो अंधकार से नहीं डरेगा, अंधकार को प्रेम करेगा। जो जितनी ज्यादा अशांति से भरा होगा उतना ही अंधकार से डरेगा। कोशिश करने के लिए कहते हैं सीधे बैठ जाना। शाम को जो महिला मंडल के द्वारा ये अष्टमी पर्यंत ये नवदा भक्ति का सत्संग करने के लिए सुझाव है, कल हुआ, बड़ा अच्छा हुआ, लोग खुशी भी हुए। रोज कुछ 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट ध्यान करने के लिए कहा स्वामी जी, अधिक 5 मिनट के लिए बैठ जाओ, केवल 5 मिनट। किंतु 5 मिनट क्या हम बैठ पाते हैं क्या, पूछना अपने आप को। जब आप अकेले बैठ जाओ, समूह में तो बैठ गए, कुछ सूचना दी जा रही है, कुछ प्राण के बारे में कहा जा रहा है, कुछ सांस ले रहे हो, तो जाकर के अपने दिल की धड़कन को सुन रहे हो। समूह में बैठे थे, किंतु अकेले बैठ जाना 5 मिनट। 5 मिनट में 3 दफे घड़ी खोल करके देख लेंगे कितने बजे। क्यों? क्योंकि डर लगता है 5 मिनट से कहीं ज्यादा ना हो जाए। कभी कभी जब एकांत में शांत बैठ जाते हो, दिल की धड़कने सुनने लगते हो। जो धड़कने सुनने लगते हो, चारों ओर की ओर कोई आवाज नहीं आएंगे, धड़कने परम शांति में इतनी जोर से बजेगी जैसे आपके कान पर नाक पर कोई नगाड़ा बजा रहा है। तो उन धड़कनों को सुनते सुनते कभी ऐसे लगेगा मेरा दिल ठप तो नहीं हो जाएगा, होता नहीं है, होगा भी नहीं, किंतु भय लगता है। क्यों? क्योंकि हम अपने उस जड़ को नहीं देखना चाहते, गर्भ में वापस नहीं जाना चाहते, गर्भ के भीतर का चिंतन नहीं करना चाहते, जड़ के बारे में नहीं सोचना चाहते। जड़े तो बड़ी अंधकार में होती है, तो हम भी अंधकार से आए। ध्यान रहे, जो महत्वपूर्ण होता है वह सदा गुप्त रहता है, जो महत्व की बात है उसको गुप्त रखी जाती है। जड़ें गुप्त है, वे महत्वपूर्ण है। हमने आपसे इसी श्रृंखला में एक दिन यह भी कहा था कि हरवंश राय बच्चन की कविता जड़ की मुस्कान, कहा था कि जड़ के ऊपर जो पंछी बैठे थे तो उन पंछियों ने कहा कि इस वृक्ष की शोभा हमसे है। कलियों ने कहा, रे तुम तो आते हो, उड़ जाते हो, कलियों से पुष्पों से वृक्ष की शोभा है। पत्तियों ने कहा, अरे कलियां तो खिलती है मौसम में, हम तो 12 महीना रहते हैं, हमसे वृक्ष की शोभा है। डालियों ने कहा, रहो चुप भी तो, न होती हम तो पत्ते पनपते थे कहां तुम। तने ने कहा, वाह बोझ तो सारा मैं सहन कर रहा हूं और तुम अपना यश बटोरते जा रहे हो, कीर्ति के गाने तुम गाते जा रहे हो। जड़ ने सोचा, अच्छा है कि हम बोले ही नहीं, अगर हम आ जाएंगे बाहर बोलेंगे तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा। जड़ केवल मुस्काई, ये बहुत जरूरी बात है, अपने आप को जानना। हरवंश राय बच्चन जो अमिताभ बच्चन के पापा, उन्होंने ये बड़ी सुंदर कहा कि हमें अपने जड़ से जुड़ना, अपनी आत्मा से, हमारी आत्मा, हमारी हमारा प्राण, हमारी चेतना, वही तो ईश्वर है जहां से हम आए। तो क्या कहा है, जीवन का सूत्र क्या है, उसे छुपा करके रखा है जीवन ने। जड़ें छिपी हैं, वृक्ष भूल सकता है, हम कभी गर्भ की कभी भी याद नहीं करते। कभी कभी कोई अपने ये जिस गांव में पैदा हुए थे वहां चले जाते हैं। अभी सुना पिछले साल ये मुकेश अंबानी को किला बहन भी अपने गांव गए, मांगरोल, पुराना गांव था, वो पुराना गांव है, उसमें अपना रहने का सब था, वो सब क्या अपने गांव तो चले गए, किंतु कोई बच्चा बड़ा हो जाने के बाद में कभी अपने गर्भ में वापस जाना चाहता है क्या? नहीं जाना चाहता है, उसको देखना तक नहीं चाहते, सोचते तक नहीं है। हम क्या सोचते हैं कि हम जड़ में, किंतु जिस गर्भ से आए वहां से तो उतना बड़े, कम से कम गर्भ का जब विचार हो तो हम माता के गर्भ को ना सोचे तो वो ब्रह्म योनि को तो सोच सकते हैं कि जिस ब्रह्म से हम आए, ब्रह्म योनि है जिसे पूरा ब्रह्मांड आया है। भू भुव स्व मह जन तप सत्य अतल वितल पाताल तलातल, ये ग्रह, ये नक्षत्र, ये सूर्य, ये चंद्र, ये मंगल, ये गुरु, ये शुक्र, ये बुध, ये शनि, ये तमाम जो उत्पन्न हुए उसी ब्रह्मांड से हुए, उसी ब्रह्मांड से मैं आया हूं, ये तो विचार कर सकते हैं कि नहीं? तो कृष्ण क्या कहते हैं कि व्यक्ति नास्तिक भी हो तो क्या हुआ, उसको कोई पालन करने वाला तो है, उसको कोई पोषण करने वाला तो है, उसके नाखून तो बड़े होते हैं, उसके बाल दाढ़ी तो बढ़ते हैं, उसकी चोटी बढ़ती है कि नहीं, उसको भूख लगती है कि नहीं, अन्न खाने के बाद में वो पचाता है कि नहीं, वो मल त्याग करता है कि नहीं, अन्न से रस बनता है कि नहीं, रस में से रक्त बनता है कि नहीं, तो कौन करता है ये सब? मैं धाता हूं। क्या कहा पिता ने, पितामह से जगतो माता धाता पितामह, मैं धाता हूं, मैं तुमको धारण कर रहा हूं, मैं ही हूं, मुझसे ही मैं ही तुम्हारी माता हूं, मैं ही तुम्हारा पिता हूं, और मैं तुम्हारा पिता मह भी हूं, मैं तुम्हें धारण किया हूं। तुम जानो कि ना जानो, पहचानो कि ना पहचानो, स्मृति आए कि नहीं आए, इनकार कर दो तभी क्या हुआ, मैं तुम्हें धारण किए हो। आप इनकार कर सकते हैं लेकिन ईश्वर से बच नहीं सकते। आप भाग सकते हैं, कितने भागेंगे, मछली कोई सागर से भागे कितनी दूर तक भागेगी? वृक्ष कहे कि मैं जड़ से भागूं, क्या वो भाग सकता है? नहीं भाग सकता, क्योंकि वहां प्राण है, वो मौलिक है, आधारभूत व्याख्या है। सारी दुनिया में धर्म मनुष्य का केंद्र है, इसलिए बहुत सारे धर्म हो, किंतु जो लोग कहेंगे कि जानवरों में तो आत्मा नहीं होती है, होती है, क्यों नहीं होती है, जानवरों में भी आत्मा होती है, हम जितने जागृत हैं शायद उससे कम जागृत होती होगी, किंतु चेतना उतनी ही होती है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि नहीं होगा। ये हाथी है, हाथी उसको एक बार प्यार दो। हमारे अहमदाबाद में एक जगन्नाथ मंदिर है, वहां पर 13-14 हाथी, शायद तो 15 हाथी होंगे, तो उन हाथियों को साल में एक बार दो बार हमारे आश्रम में आ जाते हैं, तो उनको एक आधा ट्रक भर करके इनको गन्ना खिलाते हैं, उनको प्यार देते हैं, उनको बहुत सारा दुलार करते हैं। अब वो कभी भी एक अकेले हाथी को लेके कोई साधु वहां से निकलेगा तो वो आश्रम के दरवाजे में आया तो बिना दरवाजे में घुसे उसको छोड़ता नहीं, उसको पता है यहां मुझे प्यार मिला है। कभी गलती से कभी किसी हाथी को झापड़ मार दिया न सुई चुबा दिया वो नहीं भूलेगा ना। अफ्रीका के जंगलों में चले जाएं, वहां बड़े बड़े हाथी हैं, बड़े बड़े दांत वाले हैं और बड़े बड़े कान वाले हैं, तो उन हाथियों से हमें कहा कि भाई आप जीप में जाएंगे महाराज, हाथी की फोटो खींचना है तो खींच लो, किंतु जीप से उतरना नहीं, दूर रहना, कम से कम 100 गज दूर से देखना उसको। कभी हाथी के दिमाग में आ गया कि तुम मुझे नुकसान पहुंचाने आए हो, वह ऐसा दौड़ेगा जीप को उल्टा करके रख देगा। क्या हाथी में चेतना नहीं है क्या? रंगून में जो हाथी है क्या काम करते हैं पता है? रंगून से जो टिक वुड आता है, टिक वुड वो लकड़ियां जो काटी जाती है, हाथी उनको उठाता है, उठा करके दूर जाकर के रखता है। कैसे? वो स्लीपर का एक ढेर लगा हुआ है, पांव से ठीक करता है यूं करके, तो एक ठीक के ऊपर एक ऐसे रहेगा, जैसे आप गद्दे के ऊपर गद्दा रखो, ढीला ढाला नहीं, बिल्कुल सीधी लाइन में हाथी रखता है। सुबह ठीक 8 बजे आकर के वो काम करने लगता है, जहां लकड़ियां गिरी वहां से उठा के लाएगा, जहां जमा करना है वहां पर कर देगा। और जब 12 बजे हूटर बजता है, विसल बजता है, भोपू बजता है, तो वो हाथी जहां खड़ा है अपनी लकड़ी को वहीं रख देता है, अपना खाना खाने के लिए लंच ब्रेक में चला जाता है, 1 घंटा लंच करके आता है, फिर 1 बजे जब भोपू बजा तो फिर आएगा। वो लकड़ियों के ऊपर चलते चलते उसने जो लकड़ी छोड़ी थी उसी को उठाता है, वो दूसरी लकड़ी नहीं उठाता। फिर जाकर के ये क्या हाथी में क्या चेतना नहीं है क्या? पशु में चेतना नहीं है क्या? हाँ, एक परिवार में हम जाते हैं, उनके यहां 3-4 बच्चे हुए कुत्तों के, तो उनको हम प्यार कर रहे थे। कुछ दिन के बाद में उन्होंने एक अपने साले को दे दिया, एक किसी डॉक्टर को दे दिया, एक किसी वकील को दे दिया, अलग अलग गांवों में, भरूच से एक बड़ौदा गया, एक अहमदाबाद आ गया, एक हिम्मतनगर चला गया। अब कभी भी हम गए तो ये कुत्ते हैं ना, हमको जानते हैं, बोलते हैं हमारी मां के घर में आए थे, वो प्यार करते हैं। इतनी बात नहीं है, कभी कभी तो ऐसे होता है कि हवाई जहाज से आओ, हवाई जहाज से आकर के सीधा हमको जाना है, तो हम कहेंगे थोड़ा भाई रुकना, या आरती वारती पूजा उजा अभी नहीं करना, गेट के ऊपर में आरती पूजा माला करती हो तो देर हो जाती है, थोड़ा हम ये वॉशरूम में जाना चाहते हैं, फ्रेश हो जाएंगे तो तब जाकर के बैठेंगे, किसी को मत करो। किंतु गेट में वो दोनों खड़े हुए हैं, शेरू खड़ा हुआ है गेट के ऊपर में, वो स्मिता खड़ी हुई है, कौन है? वो चाटते हैं दोनों, तो वहीं गेट पर बैठ के उनको प्यार करना पड़ता है। 10 मिनट प्यार करो, थैले से कुछ निकालो खवाओ, तब जाकर के जाओ। तो लोग बात कहते हैं, आप तो कह रहे थे आपको वॉशरूम में जाना है, अरे तुम समझती हो, ये कहां समझेंगे? इनको अगर प्यार नहीं दिया और चले गए तो 3 दिन इस घर में हम रह नहीं सकते, वो मुंह टेढ़ा करके रहेंगे, क्यों? हमसे क्यों नहीं प्यार किया? जिस दिन जाना है उस दिन वो सवेरे भोजन नहीं करते, क्या कहते हैं उसमें चेतना नहीं है? बड़ी चेतना है। हमारे आश्रम के माली ने, उसकी बहन ने कुछ तोते पाल लिए, 2 तोते बच्चों को लेके आई थी, तो रोज हम जाके तोतों को ये अमरूद देते हैं ना, मिर्ची देते हैं, प्यार करते हैं। पिंजरा खोल लेंगे तो हाथ में वो यहां आ जाएगा, कंधे पर भी बैठेगा, और सत्संग करते हैं तो इसके ऊपर बैठता है, बैठ करके ये जो वाला है ना वो पूरा खा लेता है, तोड़ तोड़ कर रख देता है। अब उसको वो कहां पर भी रहे खुला उड़ जाएंगे, उड़ते उड़ते फिर पता हो जाएगा सत्संग हो रहा है, तो फिर आकर के कंधे पर बैठ जाएंगे माइक में, ये सत्संग का टाइम है, अभी स्वामी मिलेंगे। ये कहां से प्यार आया है? उस पक्षी को प्यार है, उन कुत्तों को प्यार है, उस शेर को प्यार है, उस हाथी को प्यार है, वो इंसानियत नहीं है तो क्या है? वो इंसान नहीं है तो क्या हुआ? एक चेतना तो बनी हुई है, ईश्वर की बनी हुई है, परमात्मा की बनी हुई है, वो प्रकृति की बनी हुई है, वो रुचा की रुचा है, ज्ञान का ज्ञान है, प्रकाश का प्रकाश है, कैसे नहीं हो सकता? ये अद्भुत बात है। तो हम कहते हैं कि ये कृष्ण कहते हैं कि अजीब बात है। मैं इसलिए तो तुम्हें कह रहा हूं कि अगर कोई धर्म की खोज करता है तो वो मुझ तक पहुंच जाता है, क्योंकि मैं पीता हूं, मैं माता हूं, मैं पितामह भी हूं। अजब बात है, वो कह रहे हैं कि पिता भी मैं हूं, माता भी मैं हूं। अगर वो पिता हो सकता है तो माता कैसे हो सकता है? ये हम अपनी दुनियावी बुद्धि से सोचते रहते हैं कि अगर वो पिता है तो माता कैसे होगा। किंतु देखिए, ध्यान दें, ये कहीं बीज है, बीज में से तना होता है, बीज में से डाली होती है, बीज में से पत्ते होते हैं, बीज में से फूल होता है, बीज में से फल होता है, वो फल में फिर बीज होता है। तो वो बीज तना है क्या? तो बीज डाली है क्या? बीज पत्ती है क्या? बीज कली है क्या? बीज फूल है क्या? बीज फल है क्या? कि बीज बीज है? अरे वही बीज है जिसको पौध कहा, जिसको पेड़ कहा, वही बीज है जो कि फूल बना है, वही बीज फल बना है। तो यही भगवान भी हमारा माता भी है, हमारा पिता भी है, हमारा बंधु भी है, हमारा सखा भी है। हम एक श्रृंखला से जुड़े, हम भिन्न नहीं है, हम अलग नहीं है, हम पृथक नहीं है। हम जो कुछ भी देख रहे हैं, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, जैसे कि सागर में से एक लहर उठती है, सागर में से लहर उठती है 2 फीट 3 फीट 4 फीट, और जुलाई अगस्त में इतने जोर जोर से मरीन लाइंस के ऊपर आप चले जाएं तो 12-12-15 फीट तक ऊपर चल जाती है। ये जो लहर उठती है, वो लहर सोच ले मुझको क्या सागर से, मैं तो अपने सागर तो नीचे रह गया, मैं 15 फीट तक ऊपर जा सकती हूं। अरे पगली, 15 फीट तक ऊपर जाकर के फिर तेरा विसर्जन तो उसी में होने वाला है। तुम कहीं भाग करके जाओ, लहर तुम किनारे तक आ गई, किंतु जिस सागर से तुम्हारा जन्म हुआ है उस सागर में तुम विलीन हो जाओगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान कहते हैं कि मैं पिता हूं, मैं माता हूं, मैं धाता हूं, ये जगत में सब कुछ मैं हूं। फिर कहा भगवान ने ओंकार भी मैं हूं। ध्यान दे, ये ओंकार क्या होता है? कहा कि ओंकार मैं हूं जो ऋग है, यजुर है, सामवेद है, तीनों वेद का रहस्य जो है वो ओंकार है, वो मैं हूं। हम समझते हैं ओंकार बोलने से क्या है, ओम बोलते वो है, नहीं वो ओंकार नहीं है, वो तो उच्चारण है जो ध्वनि से होता है। हमने ताली बजा दी तो एक आवाज हो गया, तो कोई वीणा बजा लेता है टुम टुम तो आवाज हो जाता है, अरे रे ना रे ना दे, एक आवाज हो गया, तानूम एक आवाज हो गया, वो संगीत हम कहते हैं। कोई मृदंग पर थापी मार दे, कोई वीणा बजा दे, कोई बंसी बजा दे, नहीं नहीं वो नहीं होता है। ओंकार है आंतरिक चेतना है। राधा जी पूछ रही हैं बंसी को, कौन कौन तप किनु बसुरिया, अरे बंसी तूने कौन कौन सा तप किया है? हम तो कृष्ण को कभी मिलते हैं, मिले तो मिले, कभी आलिंगन तो होता ही नहीं, अधर से अधर लगे नहीं, हृदय से हृदय लगानी, बंसी तो हमेशा कृष्ण के हाथ में, नहीं तो हृदय पर, और बज गई तो उनके ओठों तक चली जाती है। बंसी ये तेने क्या तप किया है? बंसी ने कहा मैंने अपने आप को खाली कर दिया है, मेरा कोई सुर नहीं है। कृष्ण जो कुछ सुनना चाहते हैं वो खुद सुर फूक मार देते हैं, वही बजा लेते हैं, वही संगीत कर देते हैं। ओंकार कब होता है? जब तुम बोलना बंद कर दो। हम बहुत बोलते चले जाते हैं, हमें पता नहीं हम क्या बोलते हैं, बोलते ही चले जाते हैं। थोड़ा मौन होना सीखो, चुप से बैठना सीखो, शांत बैठना सीखो, अपने भीतर में जाना सीखो। बाहर तो बहुत चले जाते हैं, हमने मीरा रोड भी चले जाते हैं, थाना भी चले जाते हैं, मरीन लाइंस चले जाते हैं, चर्च गेट चले जाते हैं, कभी अपने भीतर गए क्या? अपने भीतर में चले जाओ, शांत बैठो, शांत बैठो, चारों ओर के आवाज आएंगे, एयर कंडीशन की आवाज आएगी, टैं टैं टू टू, ये व्हीकल की सब आवाज आएगी, उन तमाम आवाज को परे हो जाओ, कुछ मत देखो, कुछ मत सुनो, कुछ मत हिलो भी नहीं, शांत। तब जाकर के तमाम आवाज सुनना बंद हो जाएगा, फिर अपने दिल की धड़कन आएगी। ये ओंकार बोलना मैंने एक गले में खिरखिराहट करना नहीं है, ओठों से कुछ बोलना नहीं है, दांत का कुछ बोलना नहीं है। ओंकार दंत्य नहीं है, ओंकार तालव्य नहीं है, ओंकार है कंठ का भी नहीं है, ओंकार ओष्ठ का भी नहीं है, ओंकार हृदय के भीतर की एक ध्वनि है। और जब शांत हो जाएंगे तो अंदर से एक ध्वनि आएगी, वो आती रहेगी, उसको सुनते रहो, अखंड सुनते रहो, उसका नाम ओंकार है। उस ओंकार को अगर आप सुनते रहो कितने क्षण तक? 12 सेकंड तक, केवल 12 सेकंड तक, केवल 12 सेकेंड और कुछ भी ध्वनि ना सुनो, हिलो नहीं, चलो नहीं, देखो नहीं, गाओ नहीं, उठो नहीं, नाचो नहीं, कुछ नहीं, बाहर कुछ नहीं, स्थूल कुछ नहीं, सूक्ष्म में हो जाओ, सूक्ष्म के सूक्ष्म, सूक्ष्माति सूक्ष्म, 12 सेकेंड तक केवल ओंकार दो, तो वो आपकी एक धारणा हो जाएगी। और ऐसी 12 धारणा हो जाए जहां आप कुछ भी नहीं करते हुए स्वतः जो अंतध्वनि, जो कैसी ध्वनि है, जो अनाहत है, ये आहत होता है, अनाहत जहां कोई टकराव नहीं है, जहां कोई वाजिंत्र को खटपिट नहीं है, वो अपने से ध्वनि आती है, वो 12 सेकंड यदि 12 दफे कर लो तो धारणा एक ध्यान हो जाएगा, और ऐसे 12 ध्यान कर लो तो एक समाधि हो जाएगी। कोशिश करके तो देखो कि 12 सेकंड तक क्या हम बिना ओमकार की ध्वनि के और कुछ सुनते कि नहीं। कोई बुरी बात नहीं है, आज नहीं हुआ तो कल परवा नहीं, चलते चले जा, जो चलता चला जाता है वो मुंबई से माथेरान पहुंच जाता है, चलता चला जाता है वो शिरडी भी पहुंच जाता है, चलने वाले अहमदाबाद से वो जगदम्बा आबू अंबाजी भी चले जाते हैं, डाकुर भी चले जाते हैं, द्वारका चले जाते हैं, हाथ में ध्वज ले करके नंगे पांव चले जाते हैं, वो स्थूल यात्रा है, ये तो सूक्ष्म यात्रा है, अधिक सरल है। कोशिश करना, परमात्मा कहते हैं कि यही जो आपके भीतर में है, जो धनी है, वही ओमकार भी मैं हूं, क्योंकि इसी ओमकार का बीज है, इसी में से ही आपके वेद की प्राप्ति हुई है। क्या कहा कि ये तमाम जो वेद हैं वो मेरा ज्ञान है, मेरा स्वरूप है। वेद किसी ने लिखे नहीं है, ऋषि मुनियों के द्वारा देखे गए, ऋषयः मंत्र द्रष्टारः, ऋषियों ने मंत्र को देखा है, ऋषियों ने अपने मंत्र को देखा, उसको संजोया गया। कहां पर वेदों में, वेद चार है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, प्रत्येक वेद के भी तीन चार भाग है। क्या कहा, ब्राह्मण है, संहिता है, अरण्यक है, उपनिषद है। ये उपनिषद जो है वो अंतिम भाग है, इसलिए वेद के अंतिम भाग को वेदांत कहते हैं और वेदांत उपनिषद को कहते हैं। उपनिषद का अर्क है वो तो गीता है, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स स्मृतिर्भुक्ताम दुग्धम गीतामृतम महत। तो वेद का सार उपनिषद है, उपनिषद का सार गीता है, और गीता कहती है कि गीता का सार मेरा ओंकार है, जो परमात्मा ने कहा मैं हूं कृष्ण, वही आपका ओंकार हूं। यजुर्वेद भी मैं हूं और सामवेद भी मैं हूं, तो यही ओंकार है जो तमाम है। क्या कहा हमें कि कृष्ण कहते हैं कि मैं पितामहस्य जगत, माता धाता पितामह, वैद्यम पवित्रम ओंकार रुक्षाम यजुरेव च। और कहा गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी, ये जो गति है वह भी मैं हूं, साक्षी मैं हूं, निवास भी मैं हूं, शरणम भी मैं हूं, सुरत आपका शुभेच्छक भी मैं हूं। द्वा सुपर्णा सहजा सकाया, कहा कि एक वृक्ष पर समान रूप के दो पक्षी थे, एक स्वर्ण पंख वाला था, एक सादा था। स्वर्ण पंख वाला है स्थित स्थिर बैठता है, केवल देखता है, कुछ नहीं करता। जो सादा है वो फुदकता रहता है, उड़ता रहता है, और वो कड़वे फल भी खाता है, मीठे फल भी खाता है, कड़वा खाने से दुखी होता है। वो चुप बैठने वाला कहता है तुम मत खाओ ये कड़वा है, वो सुनता नहीं, तो दुखी होने पर बोलता है आपके भीतर आत्मा है, वो आपको टटोलती है ये मत करो, फिर भी हम करते हैं, दुखी होते हैं, फिर सिर फोड़ते हैं। तो क्या कहा, गतिर भरता भरण पोषण करने वाला मैं हूं, प्रभु सबका स्वामी हूं, साक्षी हूं, शुभ अशुभ देने वाला मैं हूं, निवास आपको निवास करने के योग्य मैं हूं, शरणम शरण देने लायक हूं, शरद मैं आपको हमेशा आपके लिए शुभ करने वाला हूं, प्रलय प्रलय रूप हूं, सबका आधार हूं, निधानम संपूर्ण भूत के लय करने वाला भी मैं हूं, अव्यय अविनाशी मैं हूं, क्योंकि कारण भी मैं हूं, क्योंकि बीज भी मैं हूं। जो बीज था वही वृक्ष बना है, जो ही परमात्मा है वही अनंत बना है। क्या कहा, आदि बीज एकले एका बीजा पोटी तरु कोटि तरु कोटि तरु कोटि। पहले एक ही बीज था, उसमें से बहुत सारे वृक्ष हो गए। ऐसे श्रुति कहती है कि एकाकी न रोचते सद्वितीयम ऐच्छत, अकेले ईश्वर को खुशी नहीं थी दूसरे की चाहना की। तो क्या कहा, एको हम बहु श्याम, मैं एक में से अनंत हो जाऊं, तो वही ऋग्वेद है, वही सामवेद है, वही यजुर्वेद है, वही ओमकार है, वही माता है, वही पिता है, वही बंधु है, वही सखा है, केवल वही है, अभी भी वही बोल रहा है, वही सुन रहा है, वही देख रहा है,
केवल वही ओम ओम परमात्मा ही है। ओम शांति। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आपके समय दान के लिए धन्यवाद। परमात्मा मंगल करे, शुभ करे, कल्याण करे। ओम नमो नारायण।